हमने पीछे देखा कि दीनदार तबके पर कुछ तनकीद थी कि वो दीनदारी के नाम पे दुकानदारी करते थे, और 35 आयत में हमने मजहबी तबके की ख़यानतों का तذکرہ पढ़ा। जिसके हाथ में माइक होता है उसके पास पूरा इख्तियार होता है कि वो जिसकी मर्ज़ी धज्जियाँ उड़ा दे, जिसको मर्ज़ी बुरा भला कह दे, जिस पे मर्ज़ी तनकीद करे, लेकिन अमूमन उस शख्स के ऊपर बात करने वाले थोड़े होते हैं, और अगर हों भी तो उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ तक दीन वाले की पहुँचती है। अल्लाह सुबहाना तआला ने कुरान पाक की ये आयात बयान करके क़यामत तक आने वाले हर उस इंसान के लिए जो अल्लाह के दीन के नाम पर लोगों के सामने आए उसको एक क्राइटेरियन दे दिया, और वो क्या है कि तुमने दीनदारी को दुकानदारी नहीं बनाना। सवाल पैदा होता है कि दीनदारी दुकानदारी में कैसे ढलती है? उसकी बहुत सी किस्में हो सकती हैं, मसलन फतवे बिकते हैं, लोग किसी भी साहिब इल्म को कुछ दे दिलाकर अपनी मर्ज़ी का फतवा ले सकते हैं। फिर इसी तरह नजराने वसूल होते हैं, लोग मोहब्बत और अकीदत के नाम पे भारी चीज़ें उनके कदमों में ला कर ढेर करते हैं। इसी तरह लोगों को अपनी मर्ज़ी का दीन देने के दावे किए जाते हैं। आज भी आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी में पार्डन बिकती है। आज के दौर में भी, अगर इस दौर में आप देखें कि पॉप को इस चीज़ का इख्तियार हासिल है कि वो लोगों के गुनाहों को बख्श दे या जो भी कर दे, एक जुमला लिख लें कि दीन के काम में जब प्रोपेगेशन से ज़्यादा प्रॉफिट पे नज़र हो जाती है ना, तो दीनदारी दुकानदारी में बदल जाती है। अल्लाह ताला ऐसी ख़यानतों को खोलकर ऐसे तमाम माल को कंज की सूरत में रखते हैं। अब यहाँ से आयत 36 और 7, इन दोनों का एक ही टॉपिक है, अहले मक्का की कुछ और तब्दीलियाँ जो उन्होंने दीन इब्राहिमी में की थी। आइए देखते हैं। इन्ना इद्दत शुहूरी, बेशक गिनती महीनों की। देखिए, इद्दत का लफ्ज़ उर्दू में भी हम बोलते हैं, हमारे यहाँ अमूमन वो लफ्ज़ एक औरत की बेवगी की सूरत में या तलाक़ की इद्दत की सूरत में बोला जाता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो लफ्ज़ इद्दत में अदद छुपा हुआ है। आइन दाल दाल इसका रूट है, और अदद कहते हैं गिनती को, और उद्दा कहते हैं तैयारी करने को। इन दोनों का आपस में रब्त क्या है कि जब इंसान किसी चीज़ की तैयारी करता है ना, तो गिन गिन के चीज़ों को रख रहा होता है। 5 दिन रहना है, अच्छा चार कपड़े रख लें, ये कर लें, वो कर लें। तो लफ्ज़ इद्दत के अंदर गिनती भी है और तैयारी भी है, ये दोनों ही लफ्ज़ हैं। हाँ, एक ख़ास टर्म के तौर पे ये उन ख़ास दिनों को कहते हैं जो एक औरत तलाक़ या बेवकी की सूरत में गुजारती है, और उसमें भी असल में देखिए तो एदादो शुमार पे बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है। इसी तरह हम सूरत इब्राहिम में पढ़ते हैं, वइन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तो वहाँ जो तउद्दु का लफ्ज़ है वो भी यही है। अगला लफ्ज़ है शुहूर। इस शहर किसको कहते हैं? महीने को कहते हैं। असल में इसमें लफ्ज़ क्या आपको पता? थोड़ा सा गौर करें ना तो इसमें बहुत ही खूबसूरत आपको इसकी वजाहत दिखेगी। शोहरत का लफ्ज़ सुना है आपने? वो भी इसी से। शोहरत हो तो क्या होता है? किसी बुरी बात का नुमाया होना, मशहूर हो जाना, ठीक है। फिर किसी भी मामले के वाजे होने को मशहूर होना कहते हैं। अमूमन उर्दू में शोहरत अच्छी बातों के लिए बोला जाता है और तशहीर बुरी बातों के लिए, ठीक है। तो अशहीर कहते हैं मशहूर और मारूफ को। अब शहर यहाँ फिर किस मानों में आया? तो लिखिएगा, शहर अरबी ज़ुबान में चांद को कहते हैं, क्योंकि इसके ज़ाहिर होने से महीने की शोहरत हो जाती है। हम भी क्या कहते हैं, रमज़ान का चांद नज़र आ गया, ईद का चांद नज़र आ गया, अब ज़िलहज का चांद नज़र आ गया। तो शोहरत और चांद में दोनों का रब्त आपने देखा, तो फिर महीने को भी शहर इसीलिए कहते हैं कि ये वाज़े और रोशन होता है, एक चांद से दूसरे चांद तक होता है। फिर इसकी दो मुख्तलिफ जमे हैं, अशहर और शहूर है। इतनी तफसील काफ़ी है, इससे ज़्यादा जाऊँगी तो आप परेशान हो जाएंगे। फरमाए कितनी है महीनों की गिनती? इन्दल्लाहिस्ना शरा शहरा, अल्लाह के यहाँ 12 हैं। कहाँ लिखी है ये बात? फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह के कानून में। यहाँ किताब से मुराद क्या है? कानून, लिखी हुई बात। बहुत कहना चाहें तो आप इसको लोहे महफूज कह सकते हैं। सवाल पैदा होता है, कब से ये बात लिखी हुई है? यौम खलक समावाती वलर्दा, जिस दिन से आसमानों ज़मीन पैदा किए गए। क्या पता चला कि महीने 12 ही हैं, शुरू से हैं, और अल्लाह ताला ने इनको शुरू से ही इस तरह से सामने रखा कि इसमें कोई तब्दीली ना हुई, ठीक है। तो आप देखिए, इंग्लिश में भी महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 12 ही हैं, इसी तरह इस्लामिक महीने मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल 12 हैं। पंजाबी के अगर कुछ लोगों को महीने याद आए हों कि चीत वसात और कुछ इस तरह के, वो भी 12 है। यानी ये डन है कि शुरू से ये 12 है। लेकिन मिन्हा अरबातुन हुरुम, इसमें से 4 महीने हुरमत वाले हैं। कौन से? ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम। ये 3 महीने क्यों हुरमत वाले हैं? क्योंकि इसमें हाजी हज का अहराम बांध कर निकलते थे और मुहर्रम में वापस पहुंचते थे। बीच में ज़िलहज का महीना आता है। और चौथा महीना है रजब। रजब क्यों? क्योंकि रजब के महीने में आम तौर पे अरब लोग उम्रा किया करते थे, तो हाजी और उम्रा करने वाले की शान के लिए चोरियां, डाके, कत्ल ये रोक लिए जाते थे और लोग सुकून से सफ़र करते थे। इसको अश्हुरे हुरम कहते थे, इसीलिए इनमें जंग वगैरह जायज़ नहीं थी। अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं, ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, यही है सीधा दीन, यानी ये सीधा सीधा तरीका है कि हर साल में एक दफ़ा सूरज ज़मीन के गिर्द अगर घूमती है या ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो एक साल बुरा बन जाता है। इसी तरह चांद हर महीने में एक पूरा चक्कर काट कर ज़मीन के गिर्द दिन रात को बनाता है। फरमाया, फ़ला तस्लिमु फ़ी हिन्ना अनफुसकुम, पस इनके मामले में अपने ऊपर जुल्म ना करो। फ़ी हिन्ना से क्या मुराद है? दो मुख्तलिफ राय हैं इसमें। पहली बात है इन हुरमत के 4 महीनों में, लेकिन अगर देखा जाए तो हमेशा के लिए फ़ी हिन्ना से मुराद इस नाशरा शहर है। यानी अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं कि चाहे हुरमत के महीने हों चाहे ना हों, तुमने किसी भी महीने में अपने ऊपर जुल्म नहीं करना। कुरैश के एक रिवाज और रस्म की तरफ इशारा है। अपनी मर्ज़ी से मुहतरम महीनों को बदलते रहते थे। किसी मुहिम या लड़ाई के दौरान अगर कोई हुरमत का महीना आ जाता तो इस महीने के एहतराम में जंगो जिदल बंद करने की बजाय ऐलान क्या करते? इस साल इस महीने की बजाय फला महीना माह हराम के तौर पर मनाया जाएगा। बस आप देखिए कि जनवरी के बाद हमेशा फरवरी आता है। अब अगर वो कोई जंग कर रहे होते और उसके अंदर एकदम ज़िलक़ाद का महीना आता तो अब ज़िलक़ाद तो ज़िलक़ाद ही था, लेकिन ये कहते नहीं इस साल ज़िलक़ाद जो है वो 2 माह बाद आएगा और अभी हम इसको कह लीजिए कि रबीउल सानी मना रहे हैं। अपनी मर्ज़ी की बातें, यानी बस कह लीजिए कि दीन में दखल अंदाजी करने का तरीका था और इस तरह जंगो जिदाल करते रहते। पूरा कैलेंडर गुड़मुड हो चुका था, लेकिन महीनों के अदल बदर और उलट फेर से गुजरते हुए, यानी इतना दो चेंजेस करते थे। एक तो ये बात जो बता दी आपको कि जब बीच में लड़ाई करने का मूड होता तो हुरमत का महीना उठा के आगे कर देते, ये ऐसे ही जैसे कोई कहे कि इस दफ़ा फरवरी जो है वो मार्च से पहले आ जाएगा और जो मार्च है उसको हम फरवरी बना देंगे, सिर्फ समझने के लिए। एक तो उनकी ये हालत थी। दूसरी भी एक और चीज़ थी, और वो क्या थी कि हर 3 महीनों के बाद 10 दिन या कह लीजिए कि 3 सालों के बाद 1 साल बढ़ा देते और इसको कबीसा का महीना कहते। क्यों करते ऐसा? आगे बात आ रही है। लियुवात यू, ताकि कमरी और शमसी कैलेंडर एक जैसा हो जाए और हज हमेशा सर्दियों में आए। याद रखिए कि आज जैसे हम बिदात के नाम पर मुख्तलिफ किस्म के लोगों को काम करते देखते हैं और हम कहें कुछ तो कहते हैं इसमें हरज क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे दीन का क्या नुकसान होता है, बिल्कुल इसी तरह ये उस दौर की बिदात थी। आज तो हमें बड़ी ही बेवकूफ़ी वाली बातें लग रही हैं ना, लेकिन जब कोई चीज़ बिदत के नाम पे आ जाती है तो फिर लोगों को वो बुरी नहीं लगती। तो अरबों ने इन महीनों के अंदर जो उलट पुलट किए हुए थे उसको अल्लाह ताला ने यहाँ खोल के रखा। लड़ने का मिजाज था, लड़ाई भड़ाई करते थे। अब जब अल्लाह का कानून रोक लेता हुरमत के महीने की सूरत में तो कानून ही बदल देते। और याद रखिए कि ये सूरज और चाँद एक कुदरती जंतरी है, हर एक के पास घड़ियाँ नहीं होती। आपके पास आज सेलफोन में हर चीज़ मौजूद है, आज से पहले के आज भी दुनिया में 50% आबादी के पास ऐसी कोई सहूलत नहीं होगी। तो लिहाजा चांद और सूरज को देख के रात दिन और गर्मी सर्दी के हिसाब से मौसम का पता चलता था। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि इसको चेंज करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके घर की घड़ी को चेंज कर दे, 9 की बजाय 10 कर दे, 10 बजे की बजाय 11 कर दे, बच्चे को स्कूल नहीं जाना वो घड़ी पीछे कर दे कि अल्लाह करे 8-9 बजे हों तो अम्मी को लगे 8 बजे हैं। ये कितनी गड़बड़ हो जाएगी, एयरपोर्ट के सिस्टम बिगड़ जाएंगे, हमारे दिन रात डेट को बदल दे। आज आप देखें ज़रा सी डेट में बदगुमानी होती है, कई दफ़ा बिग इशू आते हैं, जैसे यूएई का वीज़ा जो है 1 महीने के लिए जब लगता है, हमारे अपने घरों में ऐसा हुआ। आप वीज़े के आखिरी दिन के शौक में चले गए एयरपोर्ट पर, पता चला कि वो तो कल का चला गया। क्यों? वो कहते हैं ये कमरी महीने का एंड था, आप शमसी के हिसाब से आए। तो ये आम बात है, अरब मुल्कों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ यही बताया कि अल्लाह के ज़ाबतों और कवानीन को मत छेड़ो। ज़मीन अपनी गर्दिश 1 साल में पूरी करती है और हर महीने में चांद एक दफ़ा पहले हिलाल बनता है, फिर बढ़ते बढ़ते कमर बनता है और फिर जवाल का शिकार होता है। महीने की आखिरी तारीखों में थोड़े दिन डूबता है और फिर एक नए महीने की एक नई नवीद बनकर उभरता है। बस ये अल्लाह का मजबूत कायदा है, इसके ऊपर तुम चेंजेस ना करो। अब एक सवाल पैदा होता है कि हुरमत के 4 महीने क्यों? एक तो वजह हमें समझ आ गई ना कि उसमें हज और उमरे का एहराम बांधा जाता था, लेकिन बाज़ लोगों ने इस पर बहुत बात की और वो कहते हैं हर महीने का एक मिजाज होता है, एक मौसम होता है। जब मौसम बदलता है तो आप कहते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में रहते हुए जब सर्दी आती है तो हम क्या कहते हैं, मौसम उदास है, ऐसे ही उदासी उदासी लगती है। इसी तरह जब बहार आने वाली होती है तो दिल में खुशी होती है, तो वो कहते हैं कि ये जो महीने हैं इनमें तबीयत में भी फ़र्क पड़ता है, कल्बी असलाह भी होती है और अमली तौर पे भी इंसान का और नेकियां करने को दिल करता है, इनाबत इलाल्लाह बढ़ जाती है, हुस्ने अमल करने को दिल चाहता है। और जब लोग इन चीज़ों को बदल देते हैं ना तो इबादत का खुशू ख़त्म हो जाता है। इसको आज अपने ऊपर लीजिए, आज कितने मुसलमानों को पता है, इस वक्त भी ये ज़िलक़ादा से गुजर कर जो हम ज़िलहज में पहुँचे हैं, एक हुरमत वाले महीने से निकल कर दूसरे में हुरमत वाले महीने में आए। अभी पिछले ही महीने में आपने अपने एक वज़ीरे आज़म या सदर को उतारा। आप कहते कि अरब लोग इन महीनों की हुरमत का इतना ऐलान थे, सियासी जंगें ख़त्म, कबीलों की लड़ाइयाँ ख़त्म, ख़ानदानी लड़ाइयाँ ख़त्म, कहते थे ये महीने गुजर जाएं फिर बात करेंगे। आज कभी आपने मीडिया में कोई ख़बर सुनी आज तक? क्या कुछ हो रहा है, क्या कभी किसी ने एक ख़बरनामे में ख़बर नाफिज की कि लोगों हुरमत के महीनों का ऐलान हो गया है, अब 3 महीने कोई जंगो जिदल नहीं होगा और आपकी सारी खबरें बोरिंग हो जाएं, कोई कत्ल नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई कहीं मार नहीं, कोई कूट नहीं। आज ये हाल हमारा हो गया। वजह क्या है? जब अल्लाह के दिए हुए निज़ाम से कौमें हटती हैं तो बिल्कुल इसी तरह से होता है, और ये हज़रत इब्राहिम की मिल्लत से ये चीज़ चलती आ रही थी। आज हम इतने गए गुजरे हो गए कि हमें तो याद भी नहीं होता। हम ज़िलहज की और 10 खूबियाँ जानते हैं, लेकिन ये खूबी हमारे जहन में भी नहीं आती कि ये हुरमत के महीनों में से एक महीना है। तो लिहाजा एक तो ये ख़राबी थी, ये करनी नहीं चाहिए। अल्लाह के निज़ाम को जहाँ बिगाड़ेंगे ख़राबी करेंगे। बच्चे पैदा होने हैं, नहीं करने देंगे, ख़राबी पैदा होगी। बच्चे को बालिग होते ही शादी कर दीजिए, नहीं करते, ख़राबी होगी। मर्द कमाएंगे, मर्द नहीं कमाते, औरत कमाती है, ख़राबी होगी। ये है ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। जिस रब ने ये महीने सूरज चाँद को अपने हाथ में रख लिया, क्या वो इंसान जो अशरफुल मखलूकात में से है, क्या उसकी ज़िंदगी गुजारने के ज़ाब्ते वो मुकर्रर नहीं करेगा? तो मेरे आपके लिए इसमें यही बात समझ की है कि अल्लाह के कानून को छेड़खानी ना करें। कई लोग हज और उमरे पे जाने से पहले पूछते हैं, अच्छा हम पिल्स ले लें, अच्छा हम पीरियड्स को रोक लें, हाय थोड़े ही दिन के लिए जाना है। क्यों छेड़ते हो अपने जिस्म को? याद रखिए, जितना भोलपन से ज़िंदगी गुजारेंगे उतनी खुशी की होगी। हम जितना अपनी बीमारियों के लिए कॉन्शियस होते हैं, अंदर से चेक कर लें, ब्लड सेल चेक हो जाए, नाखनों के अंदर के सेल चेक हो जाएं, वो ये चेक हो जाएं, हमारे वो चेक हो जाएं, उतने परेशान रहेंगे। याद रखिए, हद से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होना बंदे को बीमार कर देता है। एक जरा सिंह घुसता है, अल्लाह ने उसके लिए इंतज़ाम किया हुआ, उधर से कोई एंटीबॉडी आएगी, उसको मार मुर के ख़त्म करेगी, आपको पता ही नहीं चलना। आप उसी दिन टेस्ट करवा ले जिस दिन जरा सिंह घुसा था, बस डॉक्टर ने कहना अब आपके दिन गिने गए, परेशान रोना धोना, 2 हफ्ते बाद करेंगे पता नहीं, वो मिल नहीं रहा ढूंढने के। भाई मार दिया अल्लाह ने, अंदर फौजी रखे हुए आपके दुश्मन, लेकिन आप सारा दिन मशीनों में और बीमारियों में उससे पूछ। या तो फिर इन सारी कोशिशों के बाद बंदा बहुत सेहतमंद हो और ना मरे, उम्र का कुछ स्पैम 200-300 साल हो चुका हो तो बंदा माने भी कि इन मुल्कों में रहते हुए बहुत लोग मरते ही नहीं, बीमार ही नहीं होते, हॉस्पिटलों की ज़रूरत नहीं। तो फितरत के असूल को याद रखिएगा। तो अल्लाह सुबहाना ताला की इस बात से हमने अपने लिए कितने ज़्यादा अमली इशारे ले लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया था, बड़ी दिलचस्प बात, कल मैंने इशारा कर दिया था, बावजूद उसकी वजाहत बताऊँगी कि अल्लाह के नबी ने एक ही हज क्यों किया। आज अपने बच्चों से पूछिएगा कि इतने करीब रहते थे लोग कहेंगे हाय अल्लाह के नबी को शौक नहीं था हज पे जाने का, मामा हम तो चाहते हैं हज पे जाएं और ये करें। वजह क्या है? इस गड़बड़ की वजह से जब वो हज करते थे ना, वो असल में ज़िलहज होता ही नहीं था। वो ज़िलहज की बजाय कह लीजिए कभी ज़ीक़ादा होता था, कभी मुहर्रम होता था। अब जब चेंजेस करते करते गए, जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया 10 हिजरी में, एग्जैक्टली उसमें इत्तफाकन ठीक था। ऐसे ही जैसे आपकी घड़ी रुक जाए, 12:05 पर रुक गई, सारा दिन देखते रहे ये ख़राब है, लेकिन 12:05 पे तो ठीक होती है ना। दिन में ख़राब घड़ी भी एक दफ़ा तो ठीक टाइम दिखाती है, तो कोई खोटा नहीं है दुनिया में। बेकार से बेकार बंदा भी एक लम्हे के लिए ठीक ज़रूर हो जाता है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो अल्लाह के नबी अगर पहले हज कर भी लेते ज़हर मक्का में तो 13 साल रहे, मेरे भी जहन में ये आता था इतना तो करीब है, ना वीज़ा ना टिकट ना कुछ ना कुछ, जाते कर आते। ये भी जहन में नहीं था कि नबूवत से पहले भी ये हज होता था, वो तो करते थे लोग। तो मैं सोचती थी 13 साल हो गए मक्का में बैठे हैं, दूर दूर वाले हज पे जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते? अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो हज था ही नहीं। इससे क्या पता चलता है, गलत तरीके से दीन का काम करने से बेहतर मत करें, यानी गलत तरीका सुन्नत के ख़िलाफ़। आप ऐसा नेकी का कोई फंक्शन बना के बैठे हैं, आपके ज़ोम में वो बहुत नेकी का काम है, दुनिया वाह वाह कर रही, घूम रहे, मोमबत्तियाँ जल रही और नातें पढ़ी जा रही और दरूद पढ़े जा रहे, बट अगर वो काम ठीक तरीका नहीं है तो अल्लाह के नबी ने नहीं किया। लेकिन जब आपने हज किया तो उस दिन आपने क्या फरमाया, इन्नस ज़माना कद इस्तदारा कहैयतिही यौम खलकल्लाहुस्समावाति वलअर्द, के लोगों ज़माना घूम घाम के वापस उसी चीज़ पे आ गया जिस पे अल्लाह ने ज़मीन आसमान को पैदा किया। ये तो आपने मशहूर जुमला सुना ही होगा ना। मतलब क्या था, आज आप समझ लीजिए कि वो मतलब ये था कि इस साल अब वाकई 10 ज़िलहज और 8 और 9 ज़िलहज ही को हम मीना और मुजलिफा में जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस हुक्म के साथ दूसरा किया, अगले को भी देख लीजिए, व कातिलुल मुशरिकीना, और मुशरिकीन से सब मिलकर जंग करो, काफ़तन इकट्ठे होकर, कमा युकातिलूनकुम काफा, जैसे वो सब तुमसे इकट्ठे होकर जंग करते हैं, वालमु अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, और जान लो कि अल्लाह ताला परहेज़कारों के साथ है। इस टुकड़े को मैं रोक लेती हूँ आयत 38 के साथ। असल में ये गज़वे तबूक की तैयारी के लिए एक जहन साजी की गई है, क्योंकि ये जंगों के मामलात में जो बीच में एक बात आती है वो एक से नहीं समझ आती जब तक कि उसको आगे ना ले। आगे देखिए 37 आयत को, ये है अब उनकी तब्दीलियों की दूसरी किस्म, इन्नमा नसीउ ज़ियादतुम फ़िल कुफ़्री, ये महीनों को हटाकर आगे पीछे कर लेना ये तो कुफ़्र में एक इजाफ़ा है, युदल्लु बिहिल्लज़ीना कफ़रू, जिसके ज़रिए से गुमराही में मुब्तला किए जाते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, यानी ये कोई छोटी बात नहीं है, अमन के महीनों को अपनी जगह से हटाकर आगे पीछे कर देना ये तो कुफ़्र की एक मज़ीद काफिराना हरकत है। करते क्या है, युहिल्लूनहु आमन, एक साल हलाल करते हैं, व युहर्रिमूनहु आमन, और एक और साल इसे हराम करार देते हैं। करते क्यों ऐसा, लियुवातिउ इद्दतमा हर्रमल्लाह, ताकि तादाद पूरी कर लें इसकी जो अल्लाह ने हराम करार दिए, यानी गिनती नहीं कम करते। ये नहीं थे कहते कि इस साल 4 नहीं है, हुरमत के महीने 3 हैं, या इस साल 2 हैं, या ये भी नहीं कहते थे 5 हैं। गिनती यानी नाम की नुमाइशी नेकी करने के लिए खाना पूरी कर देते थे, नेकी के काम की, दीन के काम की, लेकिन उसकी रूह ख़त्म होती। करते क्या, फ़युहिल्लु मा हर्रम अल्लाह, बहुत बड़ी बात है ये। देखिए ये इख्तियार तो अल्लाह ने नबी को भी नहीं दिया, और किसी और को कहाँ मिलेगा कि इस तरह वो हलाल कर लेते थे उसको जिसको अल्लाह ने हराम किया। याद रखिए हिल्लत और हुरमत का इख्तियार अल्लाह के पास है, अल्लाह के नबी को भी ये इख्तियार नहीं मिला। तो ये तो आम लोग थे, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये उलट फेर करके महीनों को हलाल और हलाल को हराम करना ये चीज़ पसंदीदा नहीं है। और मज़े की बात है कि ज़ुय्यिना लहुम सू आमालिहिम, इसी तरह इनके आमाल मुज़य्यन कर दिए गए थे, बुरे आमाल, लेकिन इनको बड़े खूबसूरत लगते थे अपने ये काम। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। तो एक चीज़ तो आपने बहुत अच्छी तरह समझ ली, दूसरी इनकी ख़यानत क्या थी, नसी। नसी का जो लफ्ज़ है उर्दू में आपने सुना है, निसियान, नसा, इंसान भी यही लफ्ज़ है, तो आगे पीछे करने को कहते हैं, जैसे आप मौखर करने को कहते हैं ना, नून सीन हमज़ा इसका रूट है, झिड़कने को कहते हैं, हांकना, पीछे हटा देना, किसी चीज़ को पीछे हटा दिया, नसा शयुन के मानों में आता है। तो यहाँ क्या पता चला कि महीनों को आगे पीछे कर देते थे, उधार के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, कारोबार और तिजारत के अंदर भी ये लफ्ज़ आता है, और अलमिनसातु लाठी को कहते हैं जिससे जानवरों को पीछे किया जाता है, हांका जाता है, ठीक है। अब सूरह तौबा में ये जो लफ्ज़ है नसी का, इससे अरब लोगों की एक ख़ास चीज़ जो मारूफ है वो क्या थी जो हमने पीछे देख ली, लेकिन अब एक और चीज़ भी थी, और वो क्या करते, थोड़ा सा गौर से समझिए। अब रमज़ान गर्मियों में आ रहा है, 15 साल के बाद ये सर्दियों में चला जाएगा, और फिर 30 साल के बाद रमज़ान उसी डेट पे होगा जिस पे इस साल है, इतनी बात समझ है। आप देखते हैं हर साल रमज़ान 10 दिन पीछे आता है, ये तो हमें इसी से समझ आती। तो जब रमज़ान 10 दिन पीछे है तो हज भी पीछे है। अल्लाह ने पूरे साल में घुमा फिरा कर इबादत का तसव्वुर रखा, کہ سال کا کوئی ایک دن ایسا نہ ہو کہ جس میں اللہ کی عبادت نہ ہو، جس میں اللہ کے گھر کا حج نہ ہو، جس میں اللہ کے بندے روزے نہ رکھے. یہ فطری بات تھی، اللہ کو سب کچھ پتا تھا. لیکن عربوں کے لیے حج ایک میلہ بن چکا تھا، تفریح تھی، انٹرٹینمنٹ تھی. باپ دادا کے نام پہ محفلیں سجاتے ہیں، بیٹھکیں لگتی ہیں، اور راتوں کو بیٹھ بیٹھ کے وہاں حکے پانی پیتے اور ساتھ تعریفیں کرتے. دوسری جو چیز تھی وہ کیا تھی کہ تجارت تھی. پورے سال کا ان کا ایک قسم کا سٹاک جمع ہو کے ایسے موقع پہ بکتا تھا. اب ہوتا کیا کہ جن دنوں میں حج گرمیوں میں آتا تو دوسرے شہروں ملکوں سے آنے والوں کی تعداد کم ہوتی، کیونکہ آج کل ہم تو ایسیوں والے جہازوں اور گاڑیوں میں جاتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں بھی گرمی ہے تو ہمارے ماشاءاللہ 5-star ہوٹلز ہی ہمیں بہت سرو کر لیتے ہیں. اب تو چھتریاں وہ لگ گئیں جس میں پانی ہے، کیا کچھ ہو گیا ہے. عربوں کی جو صحیح گرمی تھی وہ تو اتنی گرمی میں ہو سکتا ہے جل جلا جاتے راستوں میں، ان کے پاس انتظام نہیں تھا. اس مشکل سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اب آپ امیجینیشن میں لائیے کہ حج ہر سال 10 دن پیچھے آ رہا ہے نا، تو 3 سال میں ایک مہینے کا فرق پڑ گیا نا، 3 سال کے بعد ایک مہینہ پیچھے ہو گیا. مثلا آپ کو مثال دے دیتی ہوں کہ اگر اس سال حج یکم سپٹمبر کو آتا ہے تو 2020 میں حج جو ہے وہ یکم اگست کو آئے گا. اب وہ کیا کرتے، جب 10 دن کا فرق کرتے تو 3 مہینے میں ایک مہینہ بڑھانا پڑتا، ٹھیک ہے، ہر 3 مہینے کے بعد ایک مہینہ بڑھا دیتے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ حج ہمیشہ یکم دسمبر کو ہی رہے گا. نہیں سمجھے، حج گرمیوں میں نہ آئے، سردیوں میں آئے. اور اس ایک مہینے کو جو ایڈ کرتے تھے نا ہر 3 ماہ کے، اس کو کہتے تھے کبیسہ کا مہینہ، کاف با یا اور سین کا مہینہ کر دیتے تھے. مختلف طریقے تھے اس کے، یعنی کوئی ہر 3 ماہ بعد بڑھاتا، کوئی 1 سال کے بعد، یعنی بس قمری اور شمسی کو برابر کر دیتے. اور آپ کو پتا ہے کہ شمسی سال قمری سال سے تقریباً 11 دن بڑا ہوتا ہے، 11 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. قمری سال کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہر 8 سالوں میں 3 مہینے بڑھائے جا سکتے ہیں، یا ہر دوسرے یا تیسرے سال کے خاتمے پر ایک مہینے کا کبیسہ کا مہینہ آتا ہے. تو یہ چیز یہاں مراد ہے کہ تم یہ کام نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 ہجری کو حج کیا تو اس وقت اسی چیز کی طرف اشارہ کیا. تو بہرحال اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ مضمون پورا ہوتا ہے. یہ کیوں کرتی ہیں قومیں؟ وہ علامہ اقبال کا شعر تھا، جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر. لوگ غلط کام کو جب ایک دوسرے کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ معاشرے میں ان ہو جاتا ہے تو وہ چیز اچھی ہوتی ہے. شراب جیسی گندی چیز، بدبودار، بد ذائقہ، کیوں لوگوں کو اچھی لگتی ہے؟ ان ہے، ٹرینڈ میں ہے، شوق میں ہے. نہ اس کی عقل اچھی، نہ اس کی شکل اچھی، نہ اس کا رنگ اچھا، نہ اس کی بو اچھی، نہ اس کے اثرات اچھے. لیکن آج پوری دنیا میں دیکھیے سب سے خوبصورت ایڈورٹائزمنٹ شراب کے ہوں گے. تو شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ غلط کاموں کو اچھا بنا دیتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ یہ موضوع پورا ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کوئی سوال، کوئی بات ہے؟ چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم لوگ منڈے کو کنٹینیو کریں گے اس سے اگلی آیتوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.